tranne però se sei casco, cambiante, va, non va, se no. Samare a nepa, mata per urine, te che bas, e che puta cogliano di via. Acht bas, me acht puta. Con l'esche bar, non è a dosen bas, da vero, e cambia cogliano di via. इसका नाम सुभद्रा आठ वर्ष में आठ पुत्र उत्पन्न किया जब पुत्र देने की प्रतिज्ञा कर चुके थे वसुदेव जी प्रश्न होता है कि पुत्र उत्पन्न करने की क्या जरूरत है पुत्रों की हत्या होती कंस को मार देता इतना जल्दी जल्दी एक एक साल में एक एक पुत्र क्या पड़ता है वास्तव में वे भगवान का मुख देखना चाहते थे वे जानते थे सुने थे कि आठवें पुत्र के रूप में भगवान आएंगे इसलिए वे जल्दी जल्दी पुत्र उत्पन्न कर रहे थे आठवें का मुख देखने के लिए तो एक साल में एक पुत्र आठ साल में आठ पुत्र देवकी ने जन्म दिया आठों को देवकी के विषय में सुखदेव को शाम करते हैं सर्वदेवता देवकी सर्वदेव वही है सारे देवता देवकी में निवास करते हैं और जो भगवान की माता है वो तो समस्त देवताओं की पूज्या है आराध्य इसलिए सर्वदेवता देवकी ही सर्व देवता है सबके लिए देवता है सबके लिए पूज्य है ब्रह्मा जी के लिए भगवान पुत्र के लिए या इंद्र के लिए सबके लिए पूज्य है भगवान माता होने से हम सबकी माँ देवकी तो ऐसी देवकी ने आज प्रथम अनुवर्ष एक वर्ष में एक एक पुत्र इस तरह आठ वर्ष में आठ पुत्र और एक कन्या तो कभी कभी प्रश्न भगवत करते हैं कि आठ साल में आठ पुत्र तो कन्या कब होगी एक एक वर्ष में आठ
सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में उसका नाम कीर्तिमान था जब वे मरीची के पुत्र थे और ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाए थे तो ब्रह्मा जी ने साप दे दिया था कि तुम लोग असुर हो जाओ जब ब्रह्मा जी हरिण रूप में बन करके हरिणी रूप धारी सरस्वती के प्रति धावित हुए उनके मन में काम वासना जगी थी तो छह लड़के बहुत हंस रहे थे ये दूहे ब्रह्मा जी इतने ब्रह्मा हुए लेकिन ऐसा पतन किसी का नहीं हुआ छे किस काम के ब्रह्मा है तो वो मरीचि के पुत्र थे तो ब्रह्मा जी उनको साप दे दिए तो वो हंसे उड़ा रहे वो वास्तव में किसी बड़े व्यक्ति के अकस्मात गलत आचरण को देख कर हंसना नहीं चाहिए। वे हंसे तो उनको ब्रह्मा जी साप दिए, और वही कशु के पुत्र बने और फिर हिरण्याक्ष की पत्नी थी पूर्णा, उसके गर्भ से जन्म लिए, तो उनका नाम स्मर उद्गीत कीर्तिमान इत्यादि था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि पहले कीर्तिमान नाम था, इसलिए उसका कीर्तिमान नाम हो रहा है। अथवा हो सकता है तो सुखदेव जी तत्काल नामकरण करा दिए हो। कभी कभी बहुत जल्दी नामकरण कराया जाता है। कई बार मैंने देखा अमेरिका में कोई बच्चा होता है तो लोग फोन करते हैं इसका नाम रखना है, तो मैं कुछ कहता हूँ कि आप राशि बतलाइए, राशि पूछ लीजिए किसी ब्राह्मण से। तो कहते हैं अरे तो समय नहीं है, तुरंत नाम देना है, आप पता लगा लीजिए भारत में कहीं राशि का, क्योंकि उनको तुरंत पासपोर्ट बनाना होता है, छोटे बच्चे को तुरंत नाम देना होता है। शायद श्री वसुदेव भी इसी परंपरा को फॉलो किए, जल्दी से जल्दी नामकरण कर दिए, अन्यथा कैसे पता लगता कि कंस किसकी हत्या किया। किसी का नाम होगा तब उस पर केस होगा, कुछ होगा, तो नाम रख कर गए कीर्तिमान। पहला बेटा प्रथम जन्म, प्रथम ने पहला ज का जन्म दिया, तो आनंद कुंड भी श्री वसुदेव जी कंस को ले जाकर के दिए, नया जन्मा हुआ बच्चा फिर। प्रश्न होता है कि वो वसुदेव जी पुत्र का मरण कैसे सह लिए। तब सुखदेव जी कहते हैं किम दुस्सहन साधुना, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं वे क्या नहीं सह सकते। सो अमिता भी रहा, वसुदेव जी इस बात से बहुत घबराते थे कि उनका वचन भंग न हो जाए, जो मैंने प्रतिज्ञा किया है वो बात झूठी न हो जाए, इसके लिए बहुत घबराते थे। वचन में और पुरुष में अंतर नहीं होता है, जब बोल दिए कह दिए कि यह करना है तो करना है। वसुदेव ने कहा था कि देवकी को छोड़ दो, मैं पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। जब पुत्र हुआ तो वे सोचने लगे किसी तरह से वचन को सत्य करना है, नहीं तो झूठे आदमी के घर में भगवान का अवतार भी नहीं होगा, भगवान जन्म नहीं लेंगे। इसी बात को सोच करके वे अपने पुत्र को ले कंस को अर्पण करती। कृष्ण यद्यपि कष्ट था, मन में बड़ा दुख था पुत्र के मरने का, बच्चे के मरने का, लेकिन छाती को खड़ा करके ले गए। दुख हो तो दुख के कारण उचित काम नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। भले कष्ट हो रहा है, कष्ट से वे अर्पण किए, लेकिन किए।
क्या वसुदेव जी के मन में पुत्र सुख की लालसा नहीं थी कि हमारा बेटा बड़ा हो और मधुवचन बोले जावे? तो सभी लोग पुत्र सुख की अपेक्षा रखते हैं, पुत्र हो और उसका स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे। तो क्या वसुदेव जी पुत्र स्नेह की बात अपेक्षा नहीं किए? तब सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, विदुषा की अपेक्षा, जो विद्वान हैं वे किसी भी बात की अपेक्षा नहीं करते। विद्वान इस बात का कि भगवान हरि ही, कृष्ण ही सब कुछ है। अगर कृष्ण है तो सब कुछ हमारे पास है, इसको विद्वान करते। इस बात को जानता है कि भगवान ही वास्तविक वस्तु है, वास्तविक सत्य है। जब वे हमें प्राप्त हैं और किसकी अपेक्षा रहेगी? और किसी पुत्र के पुत्र सुखा की अपेक्षा नहीं रहेगी। तो क्या वे इसलिए पुत्र अर्पित किए कि कंस को दया आ जाएगी और छोड़ देगा? तब सुनते नहीं, नहीं, जो कदर्य हैं, जो दुष्ट हैं, वे क्या नहीं कर सकते? कंस निश्चित उस बच्चे को मारता है, यह जानते हैं कि उसने बिना कर दिया। कंस को दया नहीं आई, कंस हत्या कर दिया। इस पर सुखदेव जी कहते हैं, जो पापी हैं, कदर्थ हैं, कृपा है, वे क्या नहीं कर सकते, कुछ भी करेंगे। कंस हत्या कर ही दिया, तो देवकी ने पुत्र का त्याग कैसे कर दिया? नया जन्मे हुए प्रथम बेटा को कैसे छोड़ दिया? उस देव जी को दे दिया कि ले जाए, कैसे त्याग दिया बेटा को माँ होते हुए? सब कहते हैं दुष्ट जन क्यों देवता को न। सुखदेव जी कहते हैं कि जिन्होंने आत्मा को धारण कर लिया है, पकड़ लिया है, आत्मा में कोई परम आत्मा भगवान को, भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में जिन्होंने पकड़ रखा है, पा लिया है, वो क्या नहीं त्याग सकते हैं? कुछ भी त्याग सकते हैं। यदि कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हों और उसके लिए एक क्या दसों सैकड़ों पुत्र अर्पण करना पड़े तब भी किया जा सकता है, त्यागा जा सकता है। वास्तविक पुत्र भगवान कृष्ण है, इसी कारण से आठवें पुत्र को प्राप्त करने की लालसा से देवकी ने इस पुत्र को दे दिया। तो जिन्होंने भगवान को पकड़ा है, अपना को पकड़ा है, अगर उनके लिए कुछ भी दुष्ट नहीं हो, कुछ भी छोड़ सकते। समर्पण सत्य कंसस्तुष्ट मनाराधन प्रहसन। जब पुत्र को लेकर वसुदेव गए कंस के पास, तो कंस देखा वसुदेव जी की समान समुदाय पुत्र के मरण में और जीवन में उनका समभाव है, और सत्य में व्यवस्थिति देखा, सत्य में इतना अधिक निष्ठा है कि टिके हैं, इसको देखकर प्रसन्न हो गया कि वाह बहुत अच्छा, और हंसने लगा। और बोला हमसे संतुष्ट मन है, वो संतुष्ट हो गया है। बच्चे को मारने से पहले संतुष्ट हो गया है, बहुत अच्छा है। वसुदेव जी की सत्य के प्रति अचल निष्ठा देख करके और पुत्र में समभाव, पुत्र के मरण और जीवन में समभाव देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि प्रति यात्रो कुमार न हिस्सा दृष्टि में भया, आप ले जाइए इस बच्चे को ले जाइए, मुझे इससे भय नहीं है, न ही अस्मा दृष्टि में भय, इससे हमको भय नहीं है। सामने बोले इस बच्चे को ले जाइए, घर ले जाइए, इससे मुझे भय नहीं है। अष्टनाथ जो गर्भा मृत्यु नहीं देता है, आप दोनों के आठवें पुत्र से मेरी मृत्यु निश्चित है। अतः ये कहने का अर्थ था कि आप आठवां लाइएगा, इसको ले जाइए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कंस को दया आ गई, कंस क्षण काल के लिए वसुदेव जी के सत्य निष्ठा को देखकर और क्षमता को देखकर के संतुष्ट हो गया, लेकिन खल कितना देर संतुष्ट रहेगा कोई ठीक नहीं है। एक श्लोक में कहा गया है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जो खल होते हैं वो क्षण भर में बहुत खुश हो जाए और तुरंत रंग हो जाए, लेकिन जो सज्जन होते हैं वे किसी पर खुश होते हैं तो जीवन भर खुश रहते हैं, चाहे गलती करे कुछ भी करे फिर रुष्ट नहीं होते, तुष्ट ही रहते हैं। जैसे राम में मानस में कहा गया है कि भगवान राम एक बार कृपा कर देते हैं तो फिर कभी जिनका कभी कौन तो खुश, भगवान एक बार प्रेरणा करते हैं तो फिर किसी पर क्रोध नहीं करते। उदाहरण देते हैं तो पिता से जिस पाप के चलते भगवान ने बाली का वध किया वही पाप सुग्रीव किया, जेहियर बदल व्यास श्री बाली फिर सुकंठ सोई की चाहे सोई कर तो भीषण के भी सपने हम स्वर्ण राम ही है। गलती बाली ने किया था कि वो सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, उनका राज छीन लिया, घर से निकाल दिया। जब सुग्रीव को राज मिला तो सुग्रीव जी भी उसी माया में पड़ गए, वे बाली की पत्नी को रख लिए तारा को, फिर सुकंठ सैकी ने पूछा लिया। और यही बात विभीषण जी के विषय में है, उन्होंने भी मंदोदरी के प्रति कुछ अन्यथा भाव किया, परंतु भगवान राम सपने में भी इसको नहीं देखे। जब अपना लिए सुग्रीव को अपने सखा के रूप में और विभीषण जी को अपने मित्र के रूप में तो हमेशा वही भाव रखते थे। छोटी मोटी गलती करके ध्यान नहीं गया, सपने में भी यह सज्जन का स्वभाव है और कंस का देखे स्वभाव। अभी खुश हुआ है और कह दिया कि प्रति यात्रो को मारो यहाँ, यह बच्चा बेचारा क्या किया है, ले जाए ले जाए, इसको नहीं मारूंगा, आप अपने घर ले जाइए। तो वसुदेव ने कहा ठीक है जैसा करते हैं आपसे, तथा तथे सुत्मादायक जजो आनक दुनिया नंद तद वाक्य अस्तु। वसुदेव जी उसके वचन को अच्छा नहीं मानो अभिनंदन नहीं किए मन में, ऐसा नहीं सोचते ठीक है आप तो विपत खत्म हुई अब ये साधु बन गया अच्छा हुआ, नहीं मैंने सोचा कि अर्थ कभी भी बदल सकता है। अतः वे अपने बच्चे को मरा हुआ ही समझ लिए, ले गए लेकिन कभी भी कंस बदल सकता है। किसी साधु के प्रवचन से कोई मान लीजिए भक्त बैठा हो कथा बाघ बैठा हो और साधु के प्रवचन से वो एकादशी की महिमा सुन रहे, एकादशी को उपवास करना चाहिए लेकिन समय से पालन कर लेना चाहिए, पर इतना नहीं बताए कि एकादशी को उपवास क्यों करेगा और मांस नहीं खाना चाहिए नहीं बताया, तो व्याघ्र उपवास तो करेगा एकादशी को लेकिन व्याघ्रस जो उपासना पालन पसंद आए, जब पालन का समय आएगा तो मांस खाता है तो पशु पर विपत्ति आ जाएगी, पशु को मारेगा। अगर बाघ उपवास कर रहा है तो इसका मतलब नहीं वो बिल्कुल वैष्णव हो गया है, पालन के समय पशु को मारेगा, व्रत पूरा करने के लिए ये स्वभाव फल का होता है। हलो कराई भरपाई संग बीते न मलिन स्वभाव अभंग, उसका मलिन स्वभाव अभंग होता है कभी मिलता नहीं है। तो वसुदेव जी मन में यह मान नहीं लिए कि हाँ कंस दया किया छोड़ दिया अच्छा हुआ, बल्कि यह मानते थे नहीं नहीं कभी को लग सकता है। तो घर चले गए इसी बीच श्री नारद जी आए मथुरा, एक बगीचे में ठहर गए श्री नारद और कंस के पास खबर भेजे कि बहुत अर्जेंट खबर लेकर के श्री नारद मुनि आए हैं। तो श्री नारद जी दैत्यों के प्रति देवों के प्रति बिल्कुल शांत है, यह बहुत गलत धारणा है कि नारद जी झगड़ा लगाने वाले हैं, दोनों पक्ष में बात करते हैं, बिल्कुल गलत बात करते हैं। वो वैष्णव शिरोमणि हैं, वो दैत्यों के भी हित चिंतक हैं, सबके हित चिंतक हैं, संभव रखते हैं और इस कला में दक्ष हैं, कौन किस उपाय से कृष्ण में मन लगाएगा। असुरों को वे कृष्ण से द्रोह करके बजाते हैं, कृष्ण के प्रति द्रोह करने के लिए कहते हैं, तो वे उस तरह से वैरानुबंध से अपना मन लगा देते हैं भगवान और मुक्त मारे जाने के बाद मुक्त हो जाते हैं, तो उनका हित करते हैं, बिल्कुल संभव है। एक उदाहरण है देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय होने लगी, भगवान इस पक्ष में आ गए, इसलिए देवता लोग असुरों को मारने लगे, वे भागने लगे, असुर लोग तो पीछे से खदेड़ खदेड़ करके देवता बहुत मार कर रहे, बहुत मार है और असुरों की संख्या बहुत कम हो गई, बहुत मर गए, यहाँ तक कि बड़ी महाराज भी मार गए। तब नारद जी आए देवताओं को रोके आए कि अब युद्ध मत कीजिए, युद्ध मत करो, तुम उनकी विजय हो गई, तुम लोगों ने अमृत भी पा लिया, अब बेकार हत्या करना ठीक नहीं है। तो इंद्र भगवान और वरुण देव आदि सबको रोक दिया युद्ध मत करो, तो वे असुरों को बचाए दैत्यों की रक्षा की, तो विषम कहां है। नारद जी स्वयं है लेकिन भगवान के अवतार के लिए उत्सुक थे कि जल्दी अवतार हो, आए मथुरा एक बगीचे में घर घर कंस को आज्ञा दे बुलाए। कंस सुना कि श्री नारद जी आए हैं तो सब काम छोड़कर जल्दी से जल्दी आया, एकांत में मिलना चाहता, एकांत में ही उससे बात करनी चाहिए। कैसे कृपा छोड़े, प्रणाम किया, पूजा किया और पूछा कैसे आप आए, कौन काम है, आज्ञा दीजिए। तो नारद ने कहा मैं अभी सुमेरु पर्वत पर से आ रहा हूँ, वहाँ देवताओं की मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में यह प्रपोजल रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था कि कंस कैसे मरेगा। तो सबके प्रस्ताव में यही कहा पास होगा, रिजोल्यूशन पास हो गया कि विष्णु भगवान मारेंगे कंस को। तो विष्णु भगवान मारेंगे कंस को और सारे देवता जनुवंश में अवतार हो, यह सब पास हुआ। खबर लेकर के आया हम इतने जादव हैं, सब देवता हैं, नंदा गए ब्रजे गोपाल यश का मिशन से जो शिकर नंद आदि ब्रज में मथुरा के आसपास जो ब्रज है वहाँ रहते हैं, जितने गोप हैं और जितनी गोपियाँ हैं, जितनी स्त्रियाँ हैं यशोदा आदि, और मथुरा में जो विष्णु वंशी हैं जादव हैं और वसुदेव आदि जादव और उनकी स्त्रियाँ देवकी आदि, सर्वे वही देवता प्राय भयोर भारत। भगवान नारद जी ने आकर कहा कि ये सब देवता है, जितने जादव हैं और जितने गोप हैं सब देवता है और स्त्रियां भी सब देवता है। हमें भराया माना नाम देवते नाम बुद्धों दिमाग ये अशुद्ध पृथ्वी के भार बन गए हैं, पृथ्वी का बहुत बोझ बढ़ गया है, इनके बध का इधर उद्योग चल रहा है, तैयारी चल रही है, सबका बध करना है, यही खबर है। ये समझ करके जो करना हो करो, बहुत बड़ी तैयारी है देवताओं के द्वारा मशरूम को मारने की और पृथ्वी का भार जुटाने की, यही खबर लेकर आया। नारद जी यह ऐसा क्यों कहे, सब क्यों उकसा रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि इस तरह से दया भाव करने लगेगा, जब पुत्र को छोड़ा इस प्रकार की सद्भावना होने लगेगी तो भगवान के अवतार में विलंब हो, भगवान आने में देर करेंगे, इसलिए जल्दी आने इसके लिए कंस को कठोर बनाते हैं। विशेष विनिर गमे कंसों जतन मसुआ सुरान, नारद जी के चले जाने के बाद कंस यह विचार करके कि जितने जादव हैं सब देवता हैं और विष्णु हमारा वध करेंगे, यह सोच करके जादवों से विरोध चालू किया। जब भी सब जदुन मंत्रा सुरान जितने जादव थे सबको यही मना कि देवता है। तो देवता यह सुनते ही
समझाया, भगवान ने समझाया
तब राज भी है, राज में नहीं है, वे राज के लोग भी नहीं थे। कोई भी भाई ऐसे नहीं, परंतु लोक में ऐसी धारणा है कि ये लोग से अपने परिवार के लोगों को मरवा दिए, ईश्वर के काम अपने दादा को और अपने भाइयों को, अपने मामा को, अपने भतीजों को, सब अपने परिवार के लोगों की हत्या कराए। तो कंस को उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कंस भी एक राजा था, तो असुर राजा, तो ये क्या कोई आश्चर्य नहीं है, राजा लोग मार देते हैं ऐसे राजा लोग। लोग ही लोग था जो लोग ही होते हैं, राज्य के लोग मैं और ज्यादा दिन राज्य करूँ, अगर मेरे राज्य में कोई दखल न दे, अगर दखल देता है तो दूसरे की तो बाकी क्या, यहाँ तक कि माँ भी अगर बाधा को तो माँ की हत्या करा देते, पिता की, भाई की, अब ये अन्य सहित या संबंधी की तो बात ही बहुत अभाव है। राजा में शक्ति होती है, कोई बात बना, कोई उसे छेड़ा तो उसको मरवा देता है। घनंती जैसे को राजा न प्राय सोच, इस तरह से वो अपनी बहन और अपने जीजा को जेल में बंद किए, कौन बड़ी बात थी। और जेल में बंद किया, और जेल में बच्चे होते थे, जो बच्चा होता था उसको यही भावना होती थी विष्णु जन्म लिया है। श्री नारद जी ने बताया था उसको कि विष्णु बहुत चलान है, वो आठवें के बदले पहले के रूप में आ सकता है, कोई उस पर चेक करने वाला थोड़ा एक नहीं अनुमाता हो, वो पहला के रूप में आ सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी संख्या में आ सकता है। ये कमल के पुष्प को दिखाए जा रहे थे, अष्ट दल कमल कहे, यहां से गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और आठ से चालू करो, यहाँ एक तो पहले आठ था, एक हो गया ना। या सोच रहे थे वो देवकी बसदेव तो करा के उन्हें बंद किया ही, समाज के जादुओं से बैर किया। यहाँ तक कि जो सगे संबंधी थे जादव मथुरा में करते थे, मथुरा प्रदेश में, सबको सतर्क चालू किया। और जादवों के और ध्वज वंश के राजा थे भूमिसेन महाराज, भूमिसेन को कैद करके जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया, स्वयं विषय भूमि में रहा, राज भूमि में रहा। बहुत बलवान है वंश, कोई विरोध करने के लिए सामने नहीं आया। भीमसेन जो पिता थे तो उनको जेल में बंद किया। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि औरंगजेब अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, शाहजहां को, और यहाँ तक कि कहा था कि इसको पूरा पानी मत दो, तो शाहजहां पानी के बिना तड़पता था, आगरा के जेल में ही रहता था। तो शाहजहां ये दशा देखने के लिए और जेल गया और जा करके पूछा, ठीक है खान पान हो रहा है, ठीक से खा रहे हैं ना, ठीक से पी रहे हैं ना, एक सम्राट रहे हुए व्यक्ति से प्रश्न कर रहा है। जो ताजमहल बनाए थे उस राजा से बात पूछ रहा, जेल में जाकर के पूछा, सब ठीक है ना, तो बड़बड़ा करके शाहजहां बोला, अरे दुष्ट, तुम मुझे पानी भी नहीं दे रहे हो, अल्लाह ने बहुत बड़ा अन्याय किया कि हमको उस वंश में जन्म दे दिया, हिंदू में क्यों नहीं जन्म दिया, अगर हिंदू में जन्म दिया होगा तो हिंदू लोग अपने मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। जीवित को भी पानी नहीं दे रहे हैं, विकार। उसने कहा सर ठीक है, तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था हो जाए। तब आज्ञा दिया कि पानी दिया करो, कभी कभी पानी पुष पुष करके दिया करो। तब ताजमहल बनाने वाला को पानी मिला, और कोई तुम्हारी इच्छा है तो शाहजहां करता है, हमारी एक इच्छा है, मैंने बहुत परिश्रम करके ताजमहल बनाया, तो जेल से एक खिड़की बना दो जिससे मैं ताजमहल को देखा करूँ, देखने से हमें तसल्ली रहेगी, संतोष रहेगा। तो शाहजहां कहा ठीक है, तो खिड़की बहुत पतली निकाल दी गई, लाल किला, लाल किला में नीचे उठा, तो आज भी है, लोग बताते हैं जैसे हम तो गए नहीं हैं, हम उस मरघट को देखने के लिए हैं। वो आज भी खिड़की है जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करता। यह तो राजा की दशा, अपने बाप को जेल में बांध दिया। कौन सा भी ऐसा ही था, अपने बाप को जेल में बंद किया, अपने बहन को, अपने जीजा को, दूसरा अध्याय प्रारंभ करना है, सुखदेव का प्रणाम करोण करना वर्त महास नहीं कंस के कौन कौन सहयोगी थे, मंत्री आदि इसको गिना है। प्रलंब यह एक राक्षस था जो गोप के रूप में रहा। गोप रूप भारी जाए वक यह भी एक राक्षस था, पक्षी के रूप में रहता है, बगुले के रूप में चारों या मनुष्य के रूप में रहता है, दैत्य था, पहलवान के रूप में। त्रिणावर्त राक्षस था, यह बवंडर के रूप में रहता था, पता नहीं लगता था कहाँ है, जैसे जहां तहां बवंडर के रूप में रहता है। त्रिणावर्त और महासन यह दैत्य अजगर के रूप में रहता, बहुत बड़ा सन महाअसन अजगर बहुत खाता है, बहुत बड़ा भोजन करता है महासन का। अजगर के रूप में जहां तहां जंगल में पड़ा रहता, और यह पशु और मनुष्यों को खाता है। मुष्टिका विश्व वृद, मुष्टिक एक मनुष्य के रूप में वैध था, मतलब मुष्टिक और अरिष्ट या सांड के रूप में रहता है, पर बैल के रूप में सांड के रूप में असुर वैध द्विद या एक बानर था जो भगवान राम की सेना में मिल रहा था, बहुत बलवान। पूतना एक राक्षसी थी जिसका आहार था खून पीना, विशेष करके बच्चों का कोमल कोमल मांस खाया करते और खून पीते थे। कैसी या घोड़ा के रूप में दर्द रहता था, इतना कर्कश कठोर था और भगवान की घोड़ा को भी दांत में चला रहा था। भगवान कृष्ण की बाई भुजा को निगल लिया, मुख में चबा रहा, चबाने से उसके दांत चपकी गए, तो अलग बात है बाद में संप्रदाय है, लेकिन यह घोड़ा के रूप में बहुत दुर्दांत दर्द था। मनुष्यों को खा जाना उसका काम था। अच्छे सुंदर श्याम सुंदर के परम सुंदर बांह के कोटे करके उसको बताया, बांह उसका कचरा कचरा खाने लगा। लेकिन देव खाना चाहा उसके मुंह में भगवान का बाण बढ़ने लगा, उसे सारे दांत गिर गए। उसी के नाम पर जमुना जी का यह घाट केसी घाट कहा जाता है। भगवान के लीला में केसी दैत्य भी अमर हो गया, कोई कृष्ण घाट नहीं कहा है केसी घाट। केसी दैत्य और धेनु एक दैत्य था जो अपने परिवार के साथ गधों के रूप में रहता था, एक गद्धा के रूप में था। सभी दैत्य बहुत भयानक कर्म थे इनके, लेकिन कोई गाय के रूप में, कोई सांड के रूप में, कोई गधा के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, इस तरह ये सब छल करने के लिए कोई हमें पहचान न पा रहे और छिप छिप करके सबका बात करें। तो सब मिल करके एक कंस की सहायता की, सबसे मिल करके कंस जादवों को सताना चालू किया, उनका घर छीनना, उनका जमीन छीनना, उनका धन छीनना, सब काम किया। और अनलेस चाशु भू पड़े बाण घुमा और अन्य भी बहुत सासू बाधक थे, जैसे बाणासुर बलि महाराज का जेठ बच्चा था, उनके सौ पुत्र थे, उसमें से जेठ था बाण। तो किसी तरह से कुसंत पड़ गया, अब एक कंस का साथी बढ़ गया बनासुर और भौमासुर। भौमासुर तो खास भगवान का पुत्र था, ये भूमि देवी का पुत्र था। भौमासुर इसका वास्तविक नाम था नरक, पता नहीं उसके गुरु ने नाम रखा था तो उसके माँ उसके समझा इसने नाम रखा, पता नहीं। तो नाम नरकासुर था। नरक तो वो 16,000 राजकन्याओं का अपहरण करके अपने घर में रखा था, कन्या अविवाहित। इन सब से मिल करके कंस जादवों को सताना चालू किया। स्वयं बलि था, बहुत बलवान था, अकेले काफी था, काफी बल था उसने। ऊपर से सहाय जरासंध हो गया, जरासंध से जरासंध है उस समय पृथ्वियों में सबसे भेद था, सबसे बड़ा और कहा जाता है कि राजा राजाओं के मस्तक पर पैर देकर के चलता था। जरासंध का पैर जमीन पर नहीं पड़ता था, राजाओं के मस्तक पर। इसका अर्थ यह है कि सभी राजा उसके अधीन थे। कंस तो उसका चेला था, कंस उसका दमाद था। जब कुबलाई के हाथी को अपने बस में कर लिया तो इससे खुश होकर के दरअसल ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह ऐसे किया थी। तो जरासंध का आश्रय मिल गया, इसलिए अब इसका बल बढ़ गया। बहुत बड़ी मागत सुन से मागत उसको मगध देश का राजा जरासंध अपने आप कंस परम बलवान था ही, ऊपर से मगध देश का अधिपति जरासंध सहायक हो। सबकी सहायता से जादवों को तहस नहस करने लगा, घर द्वार छीनने लगा, बहुत पीड़ा देने लगा। ते पीड़िता कुरु पंचाल दुखी होकर के जादव मथुरा छोड़ करके और जहां तहां अलक्षित स्थानों में भाग गए। कुरु पंचाल के कहा पर भाग दिल्ली हरियाणा की तरह कुरुक्षेत्र की तरह। गुरु से तत्पर्य है मेरठ के क्षेत्र में हस्तिनापुर के तरह गुरु महाराज का अवसर क्षेत्र तो उधर भाग है और अलक्षित रहने में छिप करके मजदूर बन करके हल जोतने वाला कृषि करने वाला बन करके गुजारा करने लगा। अपना घर छूट गया, अपना धन छूट गया, जहां तहां छिप करके गुजारा कर इस तरह जीवित रहे। जहां तहां अपने संबंधित थे उस क्षेत्र में सब चले गए और वहां छिप करके रहना गुरु पंचाल के कहा। गुरु महाराज के क्षेत्र में और द्रुपद महाराज के क्षेत्र पंचाल में पंजाब में चले गए। अपना यह प्रिय स्थान मथुरा छूट गया, बहुत दुखी थे। मजदूरी करते थे, गोपालन कृषि हल हल देते थे। एक तमाम करते थोड़ी बात और कुछ ऐसे ज्ञाति थे संबंधी कंस के जो मथुरा छोड़कर नहीं गए। इस लोग से कि भगवान का अवतार नहीं होगा, हम यहाँ भगवान का दर्शन करेंगे जैसे ये लोग किसी तरह से अपनी चातुरी से कंस को अपने पक्ष करके उसको खुश करके तमन रूप धाना है, उसको अपने वश में कर सेवा कर और मथुरा ही रह गए, वे लोग नहीं गए। सभी जगह चले गए पर कुछ लोग रह गए, कुछ कुछ कमता और क्रूर जैसे। कंस तो कहता था उसको करके उसकी खुशामद करके रहते थे, इस लाभ के लिए यही भगवान आएंगे तो उनका दर्शन करेंगे, इस लाभ के लिए। कंस जैसे देश की चाकरी करते थे, सेवा करते थे, इस तरह से दर्शनी का पुत्र कौन से देवगी के छह पुत्रों की हत्या किया। एक एक करके छह पुत्रों की हत्या किया। अंतेषु सत्सु बालेषु देवक्या औरसेन्य। तो सातवें गर्भ के रूप में श्री बलराम दिया है। सप्तमों वैष्णव धर्म धनहंतम प्रत्यक्ष गर्भो बहुआ देवक्या हर्ष शोक विवाह। तो माता देवकी के सातवें गर्भ के रूप में श्री भगवान आए, जिनको अनंत कहा जाता है। अनंत का अंत अनंत, जिनका कोई अंत नहीं, जिनका स्वर्ग का, जिनकी सत्ता का कभी अंत नहीं है। भगवान अनंत गर्भ में आए, गर्भो बभू देवक्या हर्ष शोक विवर्त। जब भगवान श्री बलराम जी गर्भ में आए तो माता देवकी का आनंद बढ़ने लगा और शोक भी बढ़ने लगा। आनंद तो इसमें बढ़ रहा था क्योंकि भगवान आनंदमय है, परम आनंदमय स्वरूप नहीं है उनका, तो आनंद विकीर्ण हो रहा है। देवकी के आंखों में, देवकी के मन में, शरीर के सभी अंगों से आनंद विकीर्ण हो रहा था। आनंद धन भगवान उधर आए और शोक बढ़ रहा कि देवकी की सामान्य गर्भ की जैसे बुद्धि होती है, गर्भ में कैसे बुद्धि होती थी। देवकी सोचे थी जैसे अन्य बच्चों को मारा है तो इस बच्चे को भी जन्म लेने पर वो मार देना कौन सा, तो इस ये सोच सोच करके वो दुख भी बढ़ रहा है। सामान्य बच्चे की बुद्धि कर रहे थे और जैसे बच्चे मर गए वैसे अभी बच्चा मार दिया जाएगा, ये सोच करके दुख हो रहा था। परंतु भगवान गर्भ में थे, इससे आनंद उत्पन्न हो रहा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं हर्ष शोक विवाह करना। सातवें गर्भ से देवकी का हर्ष और शोक दोनों पर रहा विवाह। भगवान अभी विश्वात्मा भक्ता नाम भजन जदो नाम निजनाथ नाम। भगवान अपनी विश्वात्मा विद्युत्वात्म सदम भयम जदूना निजनाथा नाम योग माया समाप्त सब। भगवान विश्वात्मा विश्व के प्रत्येक जीवात्मा के अंदर जाने सबके शरीर में है सर्वस्व इस कारण से वे सबको जानते हैं सबके हृदय में है। अतः हमें अपने भक्त यादवों के दुख को समझ कर विदित्वा कंस जन्म भयम कंस कितना अत्याचार कर रहा है कंस के कारण समस्त यादव बड़े व्याकुल हैं दुखी हैं इसको भगवान समझ गए विदित्वा कंस जन्म भयम बिना किसी के बताए स्वयं जान गए। इसलिए वे विश्वात्मा है विश्व के समस्त जीवों के हृदय में सर्वस्व हिंसन मिल जाता सबके हृदय में अतः हमें जान गए जादों की विशेषता है कि निजनाथा नाम भगवान यह भी जानते हैं कि जादों के रक्षक मैं ही हूँ और कोई नहीं है स्वयं भगवान रक्षक इसको जान गए और तब जादों का दुख दूर करने के लिए योग माया आदि सब अपनी शक्ति को योग माया को आदेश किए भगवान अपने दिव्य धाम में वैकुंठ में योग माया को आदेश दे रहे हैं कोई निवेदन नहीं किया कोई प्रार्थना नहीं किया सीधा आदेश दिया गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोपीतन हे देवी हे भद्रे हे सर्व मंगलमयी तुम ब्रज में जाओ जो ब्रज गायों और गोपों से विभूषित है ब्रज की शोभा गौओं से है और गौओं को पद पालते हैं गोप उनसे भगवान कहते हैं गोप को भी अलंकतम गायों से और गौओं से गोपों से जो अलंकृत है ब्रज में गाय भरी है उस ब्रज में जाओ भगवान गोलोक से वैकुंठ से जो माया को आदेश दे रहे हैं उस ब्रज में जाओ मथुरा करने का गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप को भी अलंकृतम रोहिणी वसुदेव से वहां क्या काम है सुनो रोहिणी जो वसुदेव जी की पत्नी है वे नंद बाबा के गोकुल में रहती है रोहिणी वसुदेव से भार्य आश्रय नंद गोकुल है नंद महाराज के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी रहती है। योग माया ने पूछा भगवान से कि रोहिणी मथुरा के बदले नंद गोकुल में क्यों रहती है तो भगवान कहते अन्य वसुदेव जी की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से विवर में अलक्षित स्थान में रह रहे हैं। जब देवकी के पुत्रों का वध गठन लगा कंस तो वसुदेव जी की अन्य पत्नियां भी भाग गई तो अक्रूर जी रोहिणी जी को नंद बाबा के गोकुल कर आए अन्य विकल्पियां बहुत से अवसर स्वर्ण में रखते हैं तो वो नहीं लिए इसी कारण से कंस के भय से गोकुल में रहते हैं। देव क्या दश्रय कर वंश साक्षम धाम मान तत्सन्न कृष मतलब है देवकी के गर्भ में मेरा धाम मेरा आश्रय अंश देवज्ञा गर्भ दर्शन देवज्ञा दर्शन गर्भ से साक्षम धाम मान धाम का शरीर तेज या आश्रय निवास मेरा मामकम धाम मेरा धाम मेरा इस स्वरूप है जिनको शेष कहा जाता है सारे जगत का विनाश हो जाता है लेकिन जो बच्चे रहते हैं उनका विनाश नहीं होता उनको शेष कहा तो मेरा मेरा आश्रय मेरा स्वरूप देवकी गर्भ में है तुम एक काम करो तुमको मेरा आदेश है देवकी के गर्भ से निकाल कर देवकी के गर्भ से निकाल करके दोनों जगह भगवान सम उपसर्ग लगा रहे सम कार्य सम बहुत सावधानी से बहुत सेवा भाव से देवकी के गर्भ से संकृष्या निकाल करके और हिरण्या रोहिणी के गर्भ में सन्निवेश है ठीक से रखो तुम्हारे स्वामी है ना इसलिए सेव्य भाव से बहुत सावधानी से आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक रखो निकालो भी बहुत अच्छा से और रखो भी अच्छा से संदेशा संदेश श्री भगवान जी के लिए भगवान कारण मेरे ही धाम है मेरा आश्रय है मैं कहीं भी प्रकट होता हूँ या रहता हूँ मेरे चारों तरफ ऊपर नीचे सब तरफ श्री बलराम रहते हैं जहाँ पहले बलराम हो जाते हैं तब मैं वहां प्रकट होता हूँ एक प्रकार से भगवान के रहने जो देवकी का उदर बनाने के लिए पहले बलराम दिया है सत्तम विशुद्धम भगवान हमेशा विशुद्ध सत्व में प्रकट हो गए और श्री बलराम जी का यहाँ विशेषत्व है विशेष विशुद्ध सत्व के आधार है कहीं भी रहते हैं भगवान को वहां आधार छह समुद्र में रहते हैं तो विशेष नाग के रूप में आधार बने हैं ब्रज में आ रहे हैं देवकी के गर्भ जा रहे हैं तो पहले तो राम जी भगवान कृष्ण के रहने लायक स्थान बना देते हैं तो देवकी का गर्भ भगवत धाम हो जा रहा है
कर्म से जब बाहर हुए तभी ना भगवान आएंगे जल्दी की बात ना। इसलिए जो माया को आदेश दे रहे हैं गच्छ देवी भजन भद्रे गोप गोपी मन में, तुम गर्भ में जाओ और देवकी के गर्भ में जो मेरा स्वरूप है उससे रोहिणी के गर्भ में कर दो। सर्वपरण बहुत सावधान से करना है और अलक्ष्य कोई जाने नहीं।
क्या भगवान पूरा नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन दूसरा भेद है, वो सभी कामनाओं को पूरा नहीं करते हैं। देखते हैं किस कामना में इसका हित है, उसको पूरा करते हैं। अगर अहित होने वाला होता है तो नहीं। और देवता देवी आंख बंद करके जो भगवान परम हितैषी हैं, जो आशीर्वाद नहीं देते, आंख खोल करके देखते हैं इसमें इसका हित है, भलाई है, तब देखते हैं। जिस आशीर्वाद में बुराई छिपी होते हैं भगवान से। एक बार इंग्लैंड में मैं कथा को रहा था, एक 87 वर्ष का व्यक्ति जो पंजाब के स्थान थे, वो हमसे आए आशीर्वाद मांगने। आगे बढ़ने से कथा के बाद आशीर्वाद मांगना है कि आशीर्वाद दीजिए महात्मा जी, तो मैं धन हुआ मैं सभा में क्या आशीर्वाद चाहते हैं? तो बताए आशीर्वाद है कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। आशीर्वाद मैं पूछा आपका विवाह नहीं हुआ? तो विवाह तो हुआ है, वो तीसरा विवाह बैठी है। तीन का विवाह हो चुका था, वो माता जी बैठी थी और उनकी बेटी भी बैठी थी जो 45 वर्ष उनकी बेटी बैठी, तीसरे पत्नी थी और एक दो वो कहाँ गई, एक दो प्रलोक चली गई और एक छोड़ दी। तो मैंने कहा आपको आशीर्वाद देने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं दीदी को दिखा था कि भगवान से कहिए अगर वही करेंगे तो करेंगे, हमने ये शक्ति नहीं है। बाद में उनको संतुका दिया था कि अब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, भगवान का नाम लीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। और इस चक्कर में मन पड़े तीन विवाह करके देख लिए और 87 वर्ष की उम्र हो गई, अब क्या माया है। तो ऐसे को आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद जो माया देवी के पास है। माता जी हो सकता है दे सकते, सर्व काम वर प्रदान, समस्त कामनाओं को देने वाले लोगों मेरे आशीर्वाद से। भगवान दुर्गा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम तेजे में समर्थ हो। मैं इसके साथ नाम ध्यान पूर्वन के स्थान आने चंदना भूमि मेरा मनुष्य भूमि पृथ्वी पर तुम्हारे लिए बहुत स्थान बनाएंगे और तुम्हारा बहुत नाम रखेंगे, स्थान बनाएंगे तुम्हारे लिए, क्षेत्र और तुम्हारे लिए मंदिर बनाएंगे बहुत स्थानानी और नाम ध्यानी, और तुम्हारा बहुत नाम रखेंगे। भगवान बहुत से नाम को प्रकट कर रहे हैं, क्या क्या नाम रखेंगे और स्वयं रख रहे हैं। भगवान दुर्गा जी का नाम स्वयं कर रहे हैं, दुर्गेश भक्त काली विजय वैष्णवी कमला चंद्रिका कृष्णा माधवी कंठ के माया नारायणी शांति सागर कंठ के। तो मनुष्य तुम्हारे लिए बहुत स्थान बनाएंगे और तुम्हारा बहुत नाम रखेंगे। दुर्गा एक भद्रकाली है। दुर्गा नाम बनारस में प्रसिद्ध है। जो मूर्ति है उसका नाम है दुर्गा। भद्रकाली कलकत्ता में किताबें विजया ये भी कहीं पर नाम है। वैष्णवी कश्मीर में वैष्णव वैष्णव विष्णु की शक्ति है इसलिए वो वैष्णवी कहा। वैष्णवी विष्णु भक्त है विष्णु का भक्त है इसलिए वैष्णवी। कुमुदा चंडिका कन्या का कल्याण कुमार में कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका। जब लोग नाम रखेंगे बहुत रखेंगे आप क्यों रख रहे हैं। भगवान यही दिखा रहे हैं जो भी नाम हमें प्रकट हुआ होगा लेकिन मैं परम गुरु हूँ मैं परमेश्वर हूँ चाहे दुर्गा चाहे कोई भी हो उसका नाम मैं रखता हूँ। तो माता जी के विभिन्न संस्थानों में प्रकट होने से पहले भगवान नाम रखता है। भगवान गर्भ संकर्षण आत्म प्रारू संकर्षण गर्भ से संकर्षण करने के कारण लोग उन्हें संकर्षण कहेंगे। रामेत लोक रमणा हम लोगों के बीच में बहुत रमणीय होंगे सबको सुख देने वाले होंगे इसलिए उनको राम कहेंगे। बल भद्रम बल सया उनमें बल की अधिकता होगी बल उच्च सया बल बहुत अधिक होगा इसलिए उनको लोग बल भद्र कहेंगे। हरी सूर्य जी कहते हैं कि भगवान बलराम जी का नाम रख रहे हैं क्योंकि भगवान ने सोचा कि इस बार मैं छोटा भाई बन करके जन्म ले रहा हूँ तो अब यह लोग कहीं उसको को छोटा न समझ भगवान को फिक्र लगा दी मैं वास्तव में जगत ज्येष्ठ हूँ सबसे बड़ा हूँ ब्रह्मा रुद्र या कर्णोदक शाही शिरोदक शाही अग्नि सबका मूल कारण है सबसे बड़ा हूँ महत्व नहीं है मैं बड़ा से बड़ा हूँ सबका पूज्य है। लेकिन जब मैं बड़े भाई के अधीन रहूँगा और छोटे भाई को अपने जन्म लूंगा तो हो सकता है कि ना समझ लोग मेरे पर जो अश्रद्धा कर जाए तो छोटा है, इसलिए अपनी जगत ज्येष्ठता को अपनी सर्वोपरि सत्ता को अपने पद को जगत में प्रख्यात रखने के लिए बड़े भाई का नाम को आगे रखें। अगर बलराम जी के विषय पर जिज्ञासा करेगा ये बलराम कौन नाम रखा, राम बल जैसा नाम कौन रखा, तो पता चलेगा कि ये छोटे भाई ने रखा और बड़े भाई जन्म के पहले रखा। तब यह बात कायम रहेगी कि कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण तो भगवान भगवान को मानो फिक्र लग रहा है कि हमको लोग छोटा ना समझे, हीन ना समझे, इसीलिए अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए पहल ही ना संकर्षण राम और बल। तब यौ माया ने भगवान के आदेश को पाकर क्या किया, संदिष्ट एवं भगवता प्रत्येक प्रजा। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया सुखदेव का संदिष्टा, भगवान ने आदेश दिया तो यौ माया ने कहा तथा ठीक है ओमी स्वीकार है, ऐसा कह करके भगवान के वचन को शिरोधार्य किया और प्रत्येक ने परिक्रमा किया, भगवान की परिक्रमा किया, परिक्रमा करके गोलोक से चली पृथ्वी पर आई मथुरा, गांव करता पृथ्वी पर आकर के पथ पथा का करो जैसा भगवान ने कहा था वैसा किया, देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में कर दिया। महाराज पर एक का प्रश्न था कि श्री बलराम के एक ही शरीर से दो माताओं के पुत्र कैसे हैं, इसका उत्तर हो गया गर्भे प्रवीण के रोहिणी जो नहीं गया अहो भी संसित गर्भ इति पौरा दुचो पुरुष। जब योग माया द्वारा देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में कर दिया गया कोई कुछ नहीं चाहिए, अकस्मात हो गया भगवान की शक्ति से योग निद्रा ने किया योग मैया ने किया। तो देवकी भी नहीं जाने को दे कुछ भी दर्द कुछ भी नहीं हुआ, वेदना कहीं नहीं हुई, जिसके गर्भ में रखा जा रहा है बच्चा उस माता को कुछ पता नहीं चला, इसीलिए योग निद्रा का जोर है। बहुत आसान ढंग से बहुत आराम से माया शक्ति ने सब कर दिया। तो जब देवकी का गर्भ गायब हो गया तो कारागृह ने आने वाली कुछ स्त्रियां देखी, बात करने लगी कि देवी का गर्भ क्या हुआ, गर्भ का पता नहीं था, पहले उधर में गर्भ था और इसके बाद गायब हो गया, गर्भ माया ने तो नहीं कर दिया पर किसी को पता नहीं चला। तो मथुरा में सारी स्त्रियां और सब लोग यही कहते थे हाँ यार देवकी का यह गर्भ
या कौन सी किसी उपाय से किसी तांत्रिक द्वारा या वो झाई द्वारा या वो सभी द्वारा गिरा दिया, कोई ये ना कहे कि उसने हत्या किया इसलिए कौन से कोई उपाय करके गिरा दिया कर। कौन चूंकि पहले हत्या किया था इसलिए लोग मन करते वो किया हो, तुम बेचारा कौन से कहने को कुछ कर दिया है तो सब जो माया ने किया है, लेकिन कौन को सब लोग गाली दे रहे थे अपने घरों में इसी बीच चुप रुसो रो रहे थे और शांत दे रहे थे कौन को कि देवकी का यह अंदर देशात्मा अंदर भी खत्म हो गया। हमारे यहाँ एक कथा कहावत कहते हैं, नामी बनिया बदनाम चोर। किसी चोर का नाम जब ख्यात हो जाता है चोरी में तो कोई भी चोरी होते एक बार लोग कहते यही वही किया, और जिस दुकान में नाम हो जाता है किसी बड़ी का बनी का लोग सौदा खरीदते उसी के पास जाते हैं। अगर सौदा की सामग्री में कोई दोष है तो लोग नहीं जाते, नाम हो जाता है बनी का तो उसी के यहाँ खरीद। कंस को सब गाली दे रहे थे अपने घरों में चुपचाप रो रहे थे, तो यही सब किया यही देवकी का डर खत्म किया। यह पापी कब कुंभ पाठ घर में गिरेगा ये सब तो भगवान की लीला थी, भगवान कृष्ण के बलराम स्वयं भगवान जानते हैं सब कुछ, उनकी शक्ति उनकी आज्ञा से उनको माता रोहिणी के गर्भ में कर रहे थे, लेकिन सब लोग जान रहे थे गर्भ गिर रहे। बलराम जी इस तरह से कभी कभी अपने भक्तों को दुख दे रहे थे, भगवान के बारे में सोच करके शोक करना रोना यह भी एक सुख है। जब गर्भ में थे तो देवकी को सुख दे रहे थे और हर्ष भी दे रहे थे, और कर्म से बाहर चले गए रोहिणी के कर्म में तब समस्त मथुरावासियों को दुख में डुबा रहे। महोम विष्णु से तो गर्म इतनी पौरा रुचि आत्मा गर्व होने का।